ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हम एक मुख्य विशेषता ये देखते हैं कि हम भले एक ही क्लास में बैठे हैं, लेकिन कोई साधारण माताएं हैं, अनपढ़ भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो ये विशेषता केवल इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है और पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी भी हमारे सामने विभूतियां हैं जो दुनिया का नाम मान शान छोड़कर अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं हेतु समर्पित किया। आज ऐसी ही एक विभूति हम सबके समक्ष है, आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी, जो दुनियावी डिग्री छोड़ करके अपना जीवन बाबा की सेवाओं हेतु समर्पित किया। आप सन 1974 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और 1989 में आपने अपने आप को ईश्वरीय सेवाओं हेतु संपूर्ण रूप से समर्पित किया। प्रारंभ में राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात कुछ समय इंदौर में रहने के बाद माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। सन 2001 से दादी प्रकाशमणि जी, जो ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका थी, के व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में सेवा देने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। वर्तमान में राजयोग शिक्षिका एवं महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जन जन में स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के लिए अनेक स्वास्थ्य मेलों एवं स्वास्थ्य अभियानों में भाग लिया है, साथ साथ अनेक विषयों पर सम्मेलनों में व्याख्यान देते रहते हैं, जैसे तनाव मुक्त जीवन, क्रोध प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली, मेडिटेशन इज मेडिसिन आदि आदि। विश्व में स्वास्थ्य एवं आध्यात्म की अलग जगाने के लिए आपने विदेशों में जैसे अमेरिका और यूके में भी यात्राएं की हैं। अभी हम आदरणीय डॉक्टर सविता जी से सुनेंगे बाबा के अनमोल महावाक्य।
ओम शांति। हम जैसा कि गीत सुन रहे थे, बाबा हमको निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनाना चाहते हैं। जब बाबा ने साकार में अंतिम क्लास कराई थी, आप सभी को याद होगा कि बाबा ने 18 जनवरी 1969 में इस व्यक्त शरीर का त्याग किया था और अव्यक्त हुए थे। तो उस दिन रात्रि को बाबा ने जो क्लास कराई, उस क्लास में बाबा ने ये शब्द उच्चारण किए थे, क्योंकि ये बाबा की स्वयं की स्थिति बन चुकी थी। बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया था और अभी 31 तारीख को बाप दादा ने जो मिली चलाई, बाबा ने कहा बाप समान संपन्न बनने का सहज साधन है। आपको याद होगा सहज साधन है फॉलो फादर। तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, या कहेंगे कि हमारे दो फादर हैं। बाबा कितनी बार कहता है दो बाप का परिचय दो, तो एक पारलौकिक और एक अलौकिक, उन दोनों को हमें फॉलो करना है। यानी ब्रह्मा बाबा समान हमारे संकल्प, बोल, और कर्म है, उनके समान हम बनेंगे तो हम सहज ही संपन्न बन जाएंगे। उनके कदम पर कदम रखकर हम चलेंगे तो संपन्नता और संपूर्णता का पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना माना ब्रह्मा बाबा के समान बनना। निराकारी स्थिति आत्मिक स्थिति है, और जब हम ब्राह्मण बनते हैं, कोर्स करते हैं, तो पहला पाठ ही हम ये सीखते हैं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन सुनना एक बात है, और वो हमारे जीवन में स्वरूप में आ जाए वो दूसरी बात है। और यही कारण है कि रोज की साकार मुरली में भी बाबा हमें ये बात कहते रहते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। क्योंकि हम देह अभिमान के 63 जन्मों से अभ्यासी हैं, वो इतना गहरा है कि इतनी जल्दी वो देह अभिमान हमारा छूटता नहीं है और आत्मिक स्थिति हमारी नहीं बनती है। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया था, और जब ये आत्मा का पाठ बाबा ने पढ़ा, तो बाबा ने केवल इसके ऊपर ही बहुत मेहनत की। बाबा अपनी डायरियां भरते थे, रोज लिखते थे, अपने को याद दिलाते थे कि मैं कौन हूँ। अपने परिवार वालों के नाम लिख लिख के भी अभ्यास करते थे कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है, ये वो नहीं है जो हमने आज तक इनको जो समझा है, व्यवहार किया है। तो हम अपने आप को चेक करें कि हमारी आत्मिक दृष्टिवृत्ति या निराकारी स्थिति कितना समय रहती है। सुबह क्लास में आते हैं, थोड़ा समय योग करते हैं, उस समय आत्मा का अभ्यास किया, पूरा समय हुआ नहीं हुआ वो भी अलग बात। अमृत वेले उठते हैं, उस समय भी थोड़ी कोशिश करते हैं। फिर सारा दिन हम कर्म कॉन्शियस होते हैं या बॉडी कॉन्शियस होते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि कितनी ही बातों में लगी हुई होती है। शाम को फिर थोड़ा समय हम योग करते हैं, फिर कोशिश करते हैं आत्मिक स्थिति की, लेकिन इतना अभ्यास काफी नहीं है। देह अभिमान या कहेंगे बॉडी कॉन्शियस सारा दिन ज्यादा हो जाता है और सोल कॉन्शियस बहुत कम होता है। और अगर देह अभिमान है तो वो विकारों को आकर्षित करता है, तो फिर निर्विकारी नहीं बन सकते। निराकारी स्थिति ही निर्विकारी बनने का साधन है। और सारा दिन बाबा ने हमें कई बार ये बात समझाई है कि जब भी हमें समय मिलता है, बीच बीच में टाइम निकालकर हर एक घंटे में भी हम चेक करें, हम आत्मिक स्थिति से कर्म कर रहे हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति में, कर्म योगी स्थिति में हम कर्म कर रहे हैं, चेक करेंगे तो वो अभ्यास बना रहेगा। और वो सारा दिन का अभ्यास हमें योग में भी मदद करता है। जब हम योग में बैठते हैं, अगर हमारी आत्मिक स्थिति है तो हमारा योग सहज लग जाता है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं भी निराकार हैं और आत्मिक स्थिति में हमारी स्थिति बाप समान होती है, या हम कहते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी बाबा के समान होती है और कनेक्शन तुरंत हो जाता है, और हम योग की पावरफुल स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। बाबा की वो करंट हमें सहज मिलती है, बाबा की शक्तियां हम सहज अनुभव करते हैं। और अगर वो सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं होती है तो हमारा योग का समय युद्ध में ज्यादा जाता है, व्यस्त संकल्पों से अपने आप को मुक्त करने में हम ज्यादा समय बिता देते हैं और बाबा के साथ हम संबंध का अनुभव बहुत कम कर पाते हैं और फिर सोचते हैं योग में बैठे तो थे लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ और ही सिर भारी हो गया, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो अगर सारा दिन मेरी आत्मिक स्थिति है तो योग अभ्यास में मुझे बहुत मदद मिलती है, और न सिर्फ अपने लिए लेकिन दूसरों को भी हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है। और जितना हम दूसरों के प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे उतना ही हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होगी, उतना ही रूहानियत होगी हमारी दृष्टि वृत्ति में, उतनी ही अलौकिकता होगी, हम दूसरों को न्यारे और प्यारे नजर आएंगे। जिससे बाबा कहता है कि आपका वो स्वरूप ही सेवा करेगा, आपको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो चेहरा है, चेहरे की जो झलक है, रूहानियत की जो झलक है, वही आपकी सेवा करेगी। लेकिन वो तब होगा जब हम वो निरंतर अभ्यास करते हैं और वो हमारे स्वरूप में है। तो निराकारी स्थिति की लगातार चेकिंग करना जरूरी है, और यदि हमें लगता है कि हमारी इतनी निराकारी स्थिति नहीं बनी है तो भले हम खास टाइम निकाल के अपने आप को वो अभ्यास दें और फिर रात को चार्ट चेक करें कि क्या जैसा हमने सोचा था वैसी हमारी आत्मिक स्थिति रही। और फिर बाबा ये भी कहता है केवल मैं आत्मा हूँ ये चिंतन नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये भी साथ साथ में चिंतन चाहिए। कौन सी आत्मा हूँ, वो जो स्वमान बाबा ने हमें याद दिलाए कि मैं वही कल्प पहले वाली पुछ देवात्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। तो यदि हम ये सुमान भी स्मृति में रखते हैं तो वो नशा और खुशी हमें अनुभव होती है, और जैसी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति भी बनती है, ऊंची स्थिति का हम अनुभव करते हैं। तो आत्मिक स्थिति के साथ साथ प्रमाण की स्मृति भी बनी रहे, और ये अशरीरी स्थिति के लिए बाबा कहता है इतना सहज होना चाहिए कि जब चाहे व्यक्त से अव्यक्त हो जाए, यानी जब चाहे आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार ले और जब चाहे इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हो जाए। बाबा कहता है जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं या अव्यक्त बाप दादा आते हैं, तो जैसे थोड़ा समय के लिए देह का आधार लेते हैं, कर्म करने के लिए देह का आधार लेते हैं और फिर न्यारे हो जाते हैं। तो हमारा भी अभ्यास है ना ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं। और ये ड्रिल बाबा हमें कभी कभी मुरलियों में कराते भी हैं, और वो इसलिए कराते हैं कि अंतिम समय जब होगा या जब परिस्थितियां विकराल रूप धारण करेंगी तो ये अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा कि एक सेकंड में हम अपने आप को डिटैच कर पाएंगे। और बाबा ये भी कहता है कि ये जो अशरीरी स्थिति है ये स्थिति जैसे इंजेक्शन का काम करती है, इंजेक्शन का काम करती है माना दवाई का भी काम करती है, मानो कोई शारीरिक कर्म भोग है, बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ है, और अगर हम अशरीरी हो जाते हैं तो उस स्थिति में शरीर से डिटैच होने के कारण बॉडी रिलैक्स होती है और वो दर्द कम महसूस होता है, या सूली के रूप में वो कर्म भोग है वो कांटे जैसा अनुभव होता है, क्योंकि ये स्थिति में बाबा से हम शक्तियां खींच लेते हैं या बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, तो वो रूहानियत की शक्ति हमारी सहन शक्ति को बढ़ा देती है। तो थोड़ी दवा और दुआ से हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये अभ्यास हमें उस समय भी बहुत काम आता है जब कोई कर्म भोग हमारे सामने है। तो निराकारी स्थिति का अभ्यास अमृत वेले तो खास हम अटेंशन देकर जरूर करें, क्योंकि अमृत वेले का टाइम ऐसा होता है जब सहज हम बिंदु रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उस समय हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, हमें सहयोग देने वाली होती है, आत्माओं का भी कोई विघ्न नहीं होता, और बाबा के भी वरदानों की मदद होती है, क्योंकि वो विशेष बच्चों के लिए समय है। तो यदि हम परम धाम में उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, स्थित होते हैं बिंदु रूप स्थिति में, तो बाबा कहता है उस बीज रूप स्थिति में सब सार समाया हुआ है, सर्व गुण सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। वो स्थिति आदि अनादि स्थिति, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का भी हमें अनुभव कराती है। तो अगर अमृत वेले वो अभ्यास कर लिया तो सारा दिन अपने आप बुद्धि में वो चलता रहेगा, स्मृति में आता रहेगा, बहुत मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हम चेक करें कि मेरी निराकारी स्थिति सारा दिन में कितना समय रहती है, और निर्विकारी स्थिति जो पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके मोटे रूप और फिर इनके बाल बच्चे जिन्हें बाबा कहता है, इन विकारों का अंश वंश जो है, इन सब से हमें मुक्त होना है। सतयुग में जाना है तो सतयुग की महिमा ही है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो संपूर्ण निर्विकारी यही ही बनना है, वही संस्कार आत्मा लेकर के सतयुग में जाएगी। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांच विकार हैं, मोटे रूप में तो हम इन पर सहज जीत पा लेते हैं। जैसे बाबा कहता है काम विकार माना ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन ही है और हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन बाबा इससे भी सूक्ष्म स्थिति में हमें ले जाता है, और बाबा कहते हैं कि यहाँ तक कि दृष्टि वृत्ति में भी किसी देहधारी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो यदि वो आकर्षण होता है तो इसका मतलब अभी अंशवंश है। फिर दूसरी बात कि मानो चलो देह का नहीं लेकिन गुणों का है, उसकी विशेषताओं का है, या वो हमें बहुत स्नेह देते हैं, बहुत सहयोग देते हैं, उसके कारण थोड़ा लगाव चुकाव है, तो जहां भी एक्स्ट्रा है वो काम विकार का अंश है, तो वो हमें चेक करना है। सभी की जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो किसकी देन है? बाबा की देन है। तो वो बाबा की देन है, उस गुणों को हमें धारण जरूर करना है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। अगर हम कहीं भी प्रभावित होते हैं तो वो हमें योग में जरूर डिस्टर्ब करेगा, उसकी पहचान है, चेकिंग है कि जब आप योग में बैठते हैं और अगर कोई आत्मा आपकी बुद्धि को खींचती है, आपको वो ज्यादा याद आती है, बाबा कम याद आता है, बाबा से बुद्धि योग कम लग रहा है लेकिन उस आत्मा से ज्यादा लग रहा है, फिर वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लगाव चुकाव किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई का बहन के साथ हो या बहन का भाई के साथ हो, भाई का भाई के साथ भी हो सकता है, बहन का दूसरी बहन के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो आत्मा बुद्धि को खींच रही है तो इसका मतलब वो अंश वंश है मेरे अंदर और मुझे उस पर पुरुषार्थ करना है, मुझे उसे खत्म करना है। बाबा के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि उसको यूज करके हम सभी विकारों के अंश वंश को खत्म कर सकते हैं। फिर क्रोध में अगर हम देखते हैं तो और विकार जो है वो गुप्त है, लेकिन क्रोध तो प्रत्यक्ष होता है क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में ही क्रोध होता है, और इसीलिए बाबा कहता है कि अगर बच्चे क्रोध करते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं, और अगर बाप का नाम बदनाम करते हैं तो क्या कहते हैं, सदगुरु का निंदक, सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। तो हम दोनों तरह से सेवा कर लेते हैं, अगर हम ज्ञान में चलने के बाद भी गुस्सा करते हैं तो डिसर्विस करते हैं, और यदि हम क्रोध को जीत लेते हैं, सहन शक्ति को धारण कर लेते हैं, तो बाबा की सर्विस भी होती है। एक माता, मुझे याद है कुछ दिनों पहले मुझे अपना अनुभव सुना रही थी, उसने कहा कि हमारे घर में मेरे पति जो हैं वो शराब पीते हैं और ऐसे ही होता था, आए दिन शराब पी के वो घर में आते थे और फिर कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ लेते थे। तो मैं बहुत दुखी रहती थी और मुझे लगता था क्या मेरा जीवन है भगवान, क्या मुझे इसीलिए संसार में जन्म दिया, ऐसा ही मेरा जीवन कटेगा। तो मैं भगवान को भी कहती रहती थी। और एक बार ऐसे ही किसी बहन ने मुझे कहा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, तुम यहाँ थोड़ा सुनोगी तो तुमको शांति का अनुभव होगा। तो बोला कि मैं इस रीति वहां गई और मैंने कोर्स किया और मुझे लगा कि शांति तो क्या, मुझे तो भगवान ही मिल गया। इतनी खुशी हुई मुझे और बोला कि जो भी बाबा कहता था मुझे लगता था कि मैं वो सब करूं। तो उसने पहले जब पति उसके साथ लड़ता था तो वो भी उसके साथ बराबर लड़ती थी, है ना, दोनों की बराबर बातचीत होती थी। लेकिन अब ज्ञान में चलने के बाद उसमें ये चेंज आ गया कि उसने उस पति का सामना करना बंद कर दिया। वो बोलता भी था तो वो शांत रहती थी और वो सोचती थी ये इसका तमोगुणी पार्ट है, ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, मुझे अपना पार्ट बजाना है। और उसकी कोई भी बात को वो आराम से सहन करती थी। तो वो भी देखता था कि ये जब से सेंटर में जाने लगी है तब से इसमें बहुत शांति आ गई है, मेरी किसी भी बात का विरोध नहीं करती है, मुझे मेरे हाल पे ही इसने जैसे छोड़ दिया है। तो प्रभाव पड़ता था उसके ऊपर, भले वो कहता नहीं था कुछ लेकिन अंदर ही अंदर जैसे उसको ये बात प्रभावित करती थी। और 5-6 महीने के बाद सेंटर पर एक प्रोग्राम था तो उसने ऐसे ही कहा अपने पति को कि चलो आप भी उस प्रोग्राम में चलो, देखो वहाँ क्या सिखाते हैं। तो वो गया प्रोग्राम सुनने और जो प्रोग्राम सुना उसको बहुत अच्छा लगा, ज्ञान की बातें अच्छी ही लगती हैं, अच्छी लगी उसको। फिर बहन ने उसको बोला जब मिली तो कि कोर्स करो आप भी, उसने भी कोर्स किया। कोर्स करने के बाद धीरे धीरे वो भी ज्ञान में चलने लगा और ज्ञान में चला तो उसकी भी शराब छूट गई। तो देखो इतना परिवर्तन जैसे ही उस बहन ने अपने में लाया कि ये पति कितना भी गुस्सा करे मेरे ऊपर, कितना भी बोले, लेकिन मुझे शांत रहना है, मुझे सहन कर लेना है, क्योंकि बाबा ने मुझे ये सिखाया है। उस परिवर्तन ने दूसरी आत्मा के जीवन को भी परिवर्तन कर दिया। बोल के नहीं सिखा सकी वो उसको, लेकिन अपने व्यवहार से उसने उसको सिखा दिया। तो ऐसे ही हम भी जब ये परिवर्तन अपने अंदर लाते हैं तो हम सहज ही दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण आत्माएं भी कहीं कहीं चूक जाती हैं इस धारणा को करने में। और कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने कुछ गलत कर दिया या अच्छा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ, मेरे को अपमान के कुछ शब्द बोल दिए, मेरी निंदा कर दी, कहीं ग्लानी कर दी, या झूठ बोला हमसे, धोखा दे दिया हमको, ये सब कारण बनते हैं जब हमें गुस्सा आता है। और हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो हम भी गुस्सा कर जाते हैं और वैसे ही गुस्सा करते हैं जैसे सामने वाला गुस्सा कर रहा है। तो इसका मतलब हमें अपने ऊपर अभी पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बाबा ने कई बार ये बात कही है कि क्रोध मुक्त हमें बनना है। पिछली बार भी बाबा ने एक बार हमें ये होमवर्क दिया था। तो आप में से कौन समझते हैं कि अभी हमने क्रोध को पूरी तरह जीत लिया है, इन बातों में हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है? कारण तो बनेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता इस कलयुग में क्रोध के कारण ना बने। कलयुग है ही कले कलेश का युग, तो वो स्थितियां तो जरूर उत्पन्न होंगी। लेकिन स्थिति उत्पन्न होते हुए भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, इतनी सहन शक्ति है मेरे अंदर, इतनी समाने की शक्ति है, इतनी शांति की शक्ति है, या इतनी प्रेम की शक्ति है जो भी हम कहें, या इतनी क्षमा की शक्ति है, क्योंकि ये गुण जब होंगे तभी हम उस क्रोध को जीत सकेंगे। तो जो समझते हैं कि हम ऐसा कर पाते हैं वो हाथ उठाएं। फिफ्टी % भी नहीं है, हाँ 10% होंगे जो सभा में बैठे हैं। फिर भी जो कर पाते हैं सचमुच उनके लिए आप सभी ताली बजा सकते हो। और इससे भी आगे बाबा कहता है कि क्रोध के अंश वंश भी, जैसे मानो हमें किसी के प्रति नफरत होती है तो ये भी क्रोध का अंश है। और नफरत क्यों होती है? जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों चलते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी दूसरों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार हम उनको चलाना चाहते हैं। और जब वो हमारे मन पसंद कर्म नहीं करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो फिर हमें उनसे नफरत होने लगती है। तो ये भी नहीं, जहां भी क्रोध की स्थिति पैदा होती है वहां हमें हमेशा यही सोचना है, ये इस आत्मा का पार्ट है, इस समय ये माया के वश है, क्योंकि बिना माया के वश हुए वो व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा। तो जो परवश आत्मा है उसको मुझे रहम करना है, उसको मुझे सहयोग देना है। अगर हम भी उसके साथ गुस्सा करने लगे तो हम भी वश में हो गए, लेकिन मुझे सहयोग देना है, उसे शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति देनी है, शांति की शक्ति देनी है, ताकि उसका भी परिवर्तन हो जाए। तो हमारा ये भाव अगर उस समय होगा तो हम अपने गुस्से को सहज कंट्रोल कर पाएंगे, फिर वो चाहे किसी भी तरह का हो। और ऐसे ही लोभ, लोभ दुनिया में कहते हैं धन का लोभ होता है व्यक्ति को, या वस्तुओं का लोभ होता है, लेकिन बाबा के बच्चे जो हैं वो ज्ञान में जब आते हैं तो उस लोभ से मुक्त होते हैं कि अगर हम लखपति हैं तो हम करोड़पति हो जाएं। दुनिया में जैसे लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम धन कैसे इकट्ठा करें, एक मकान है तो दो मकान कैसे बनाएं, एक गाड़ी है तो उसको दो गाड़ी कैसे हो जाए, मतलब इसको लोग कहते हैं जो है पहले से उससे भी ज्यादा ज्यादा मुझे चाहिए, मतलब मेरी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो ब्राह्मण बनने के बाद ये मोटे रूप का लोभ काफी कम होता है, पूरी तरह से कम हो जाता है मैं ऐसा नहीं कहूंगी, ब्राह्मणों में भी कहीं कहीं होता है कि जो भी चीजें होती हैं, बाबा कहते हैं आवश्यकता है जितनी उतना तो मिलना ही चाहिए, और वो बाबा के बच्चों को मिलता ही है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा अगर हम सोचते हैं, अगर वो आवश्यकताएं हमारी बेहद में चली जाती हैं, तो फिर वो लोभ का अंश है। मानो आपके पास, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं जूते हैं, तो दो जोड़ी जूते आपको जरूरत है, पर उसकी बजाय आपने 10-10 जोड़ी जूते रख रखे हैं। अगर कपड़े हैं आपके पास और बहुत वैरायटी कपड़े आप रखते हैं, उतने कपड़ों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी और इकट्ठे करते जाते हैं। एक मोबाइल आपको जरूरत है लेकिन एक मोबाइल तो क्या आप 2-3-4 मोबाइल रखते हैं, और फिर कोई भी नए मॉडल का निकलता है फिर आपकी वृत्ति उसमें भी जाती है कि ये भी मेरे पास होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह की इच्छाएं मन में रहती हैं, अभी भी हद की इच्छाएं, तो इसको लोभ कहेंगे। तो वो हमें फिर चेक करना है कि क्या अभी तक भी मेरी वृत्ति ऐसी है। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो भी विकार हैं उनको हम परिवर्तन करें, और बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई थी एक मुरली में परिवर्तन करने की, कि जैसे काम विकार है तो उसको हम शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन कर दें। जैसे ही काम का अंश समझ में आने लगता है तुरंत उसको इस रूप में बदल दो तो वो खत्म हो जाएगा। क्रोध आता है उसको क्रोध अग्नि को योग अग्नि में बदल दो, योग अग्नि में माना तुरंत बाबा के साथ मैंने कनेक्शन जोड़ा, बाबा शांति का सागर है, उससे कनेक्शन होते ही मैं आत्मा अपनी शांत स्वरूप स्थिति में आ जाऊंगी, क्रोध खत्म हो जाएगा। और लोभ के लिए बाबा कहता है कि जो हद का लोभ है, जो वस्तुओं का लोभ होता है, धन का लोभ होता है, इवन खाने पीने का भी लोभ होता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए वैसा खाना होना चाहिए, बाबा कई बार कहते हैं 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी अच्छा है, और अगर सूखी रोटी और दाल मिलती है तो भी अच्छा है। जो जिस हाल में बाबा रखता है उस हाल में हम खुश हैं। लेकिन जो लोभ है उसको हम शुभ लोभ में बदल दें। शुभ लोभ अर्थात, शुभ लोभ क्या है ब्राह्मण जीवन का, मैं बाप समान बन जाऊंगा ना, जो इच्छाएं हैं उन्हें शुभ इच्छाओं में बदल दें। जो शुभ इच्छाएं हैं वो हमारा कल्याण करने वाली हैं, वो हमें संपूर्णता की ओर ले जाने वाली हैं। लेकिन ये जो अशुभ इच्छाएं हैं वो दुख का कारण है। और फिर मोह पर अगर हम कहते हैं तो जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मोह है। लोभ और मोह दोनों विकार लगभग एक जैसे हैं, कहेंगे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोह ज्यादा व्यक्तियों में होता है, लोभ जो होता है जो है उससे और ज्यादा इच्छा करना, लेकिन मोह जो है उसमें ही लगाव होना। जो मेरे पास जिसको हम मेरा समझते हैं वो हम छोड़ नहीं सकते हैं, फिर वो चाहे वस्तु है या व्यक्ति है। और उसको जरा भी कुछ होगा जिसमें हमारा मोह है, अगर उसको जरा भी दुख होगा तो मुझे भी दुख हो रहा है, इसका मतलब मेरी अटैचमेंट है। जैसी स्थिति उसकी होगी उस स्थिति का असर मेरे ऊपर भी आएगा। वो परेशान है तो मैं भी परेशान हो रही, निशानी है। मतलब हम मोह को चेक कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं मोह दुख का कारण है। और जो मेरी चीज है अगर उसको जरा भी नुकसान होता है तो मैं परेशान हो जाऊं। एक व्यक्ति था, दुकान पर बैठा था और उसको पता चला कि उसका घर जल गया है ना, उसको उसमें आग लग गई है, घर दूसरी जगह था। तो उसने फटाफट अपनी दुकान को नौकरों की उस पर छोड़ा और भागा कि मेरा घर जल रहा है, मेरा कितना नुकसान हो गया होगा। वो उसका पुराना घर था, उसने एक नया घर ले लिया था, उसमें वो शिफ्ट होने वाले थे पर अभी हुए नहीं थे। तो वो जब पहुंचा वहां तो देखा कि घर वालों ने सारा सामान तो बाहर निकाल लिया है, बहुत थोड़ा बहुत कोई बचा होगा अंदर, और सब भी बाहर है, इसका मतलब केवल घर ही जल रहा है। लेकिन अब वो घर जल रहा है ये सोच के भी उसे दुख होने लगा, वो थोड़ा रोने लगा, कष्ट महसूस करने लगा उसका। तो उसका पड़ोसी आया और उसने कहा कि आप है ना परेशान मत हो। तो उसने कहा मेरा घर जल रहा है और मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि ऐसा है, ये घर आप बेचने वाले थे ना, आपके बड़े बेटे ने आज सुबह ही इसकी सारी लिखा पढ़ी कर दी, और जिसने इस घर को खरीदा है उसने सारी पेमेंट भी उसको कर दी है, और गवाही में उसने मेरे साइन करवाए थे इसलिए मुझे पता है। तो अब उसको पता चला कि ये घर अब उसका नहीं रहा, ये तो बिक चुका है। तो जैसे ही उसको पता चला ये घर बिक चुका है, अब मेरा नहीं है, वो बिल्कुल शांत हो गया और एकदम अब समझ में आ गया कि मेरा तो है ही नहीं, और जो चीज मेरी नहीं है वो हमें दुख नहीं देती है। दुनिया में देखो कितने लोग मरते हैं, हम रोज समाचार सुनते हैं, तभी हमें दुख होता है। लेकिन मेरे घर में मेरे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, हमें दुख होता है, और उतना ही दुख होता है जितना हमें उससे मोह होता है। अगर बहुत ज्यादा मोह होगा तो उसकी मृत्यु हमें बहुत दुख देगी, हम रोते रहेंगे। जैसे माँ को बेटे से मोह होता है, अगर बेटा मर गया तो बेटा मरने के बाद सालों तक रोती रहेगी। और अगर मोह नहीं है, मानो बूढ़ी माँ है, बहुत उम्र हो गई है, उसको जाना ही है, पता ही है, हम पहले से ही तैयार हैं, उसने शरीर छोड़ दिया, ज्यादा दुख नहीं होगा क्योंकि अब उतना मोह उसमें नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का उतना ही दुख हो रहा है अगर वो हमसे बिछुड़ता है या उसको कुछ कष्ट होता है या मृत्यु होती है, जितना हमें उससे मोह है। और बाबा इसकी विधि हमें बताते हैं, मेरा मेरा को किसमें बदलो, तेरा तेरा। कोई भी मेरा नहीं, सब बाबा के हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। जो भी कर्तव्य मुझे मिला है, जो भी कार्य मैं कर रही हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, इन आत्माओं के मुझे निमित्त बनाया है। क्योंकि अंतिम पेपर भी है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये पेपर अंत तक चलने वाला है। तो ये चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग हमारी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में और वस्तु में अगर मेरा मोह है या ज्यादा मेरी रग जाती है तो मुझे उस पर पुरुषार्थ करना है और मेरे जीवन का आधार सिर्फ एक बाबा ही हो, ताकि अंत समय मुझे बाबा ही याद आए, नहीं तो अंत समय में हम फेल हो सकते हैं। वो व्यक्ति मेरी बुद्धि को खींच सकता है या वो वस्तु भी मेरी बुद्धि को खींच सकती है। कई बार दादी क्लास कराती हैं तो वो हमें एक एग्जांपल सुनाती हैं कि एक माता थी, वो हमेशा खाने के साथ पापड़ खाती थी, यानी पापड़ चाहिए ही चाहिए, बिना पापड़ के नहीं चलेगा। और बीमार हो गई वो, डॉक्टर ने पापड़ खाने के लिए मना कर दिया बीमारी के कारण, बिस्तर पर थी, कुछ ऐसी बीमारी थी और बीमारी इतनी ज्यादा थी कि अंतिम समय आ गया और जाने के पहले उसको वो पापड़ बहुत याद आ रहा था, क्योंकि बहुत दिन से उसने पापड़ नहीं खाया था तो उसको पापड़ चाहिए था। उस समय आखिर उसको पापड़ खिलाया, तब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही अहंकार, बाबा पांच विकारों में हम अहंकार कहते हैं और अलग से भी उसको निरअहंकारी स्थिति में रखा जाता है। तो क्यों डबल अंडरलाइन किया अहंकार को? मैंपन भी जो है वो बहुत जल्दी नहीं छूटता है ब्राह्मण जीवन में। भले हम देही अभिमानी होने का अभ्यास करते हैं लेकिन फिर भी उसका जो अंश वंश है अहंकार का, वो हम चेक कर सकते हैं। कुछ निशानियां हैं उसकी, अगर अहंकार हमारे अंदर अभी भी अंश वंश में है। जो अहंकारी होता है वो हमेशा अपने को सही समझता है, वो कभी भी अपने को गलत नहीं समझेगा, दूसरे को हमेशा वो गलत समझेगा और उसे सही करने की कोशिश करेगा। वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते लेकिन दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मैं राइट हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो राइट है, दूसरा कभी राइट हो ही नहीं सकता है। फिर जो अहंकारी होता है वो दूसरों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, यानी रौब जमाते हैं, थोड़ा बहुत जैसे समझते हैं कि रौब तो रखना ही पड़ेगा, अगर रौब नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो अगर हम वो रौब रखते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अंश है। फिर जो अहंकार वाला होता है उसके अंदर ईर्ष्या बहुत जल्दी आती है, क्योंकि वो अपने को बहुत कुछ समझते हैं और जब वो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें वो सहन कम होता है और इसके कारण कई बार फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो ईर्ष्या की भावना ये उनके अंदर जल्दी आ जाती है, क्योंकि समझते हैं मेरा नाम मान शान बना रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो दूसरा उसके बीच में कोई विघ्न रूप ना बन जाए, ऐसी वो उनकी कोशिश रहती है। और उसके साथ साथ वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, जिद और सिद्ध करेंगे, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, नहीं ऐसा था ना वैसा था, तो बहुत सहज अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम अपने आप को चेक करेंगे कहीं ऐसे कुछ संस्कार हमारे अंदर तो अभी तक नहीं है, और अगर हैं तो फिर बाबा के ज्ञान के अनुसार उस पर पुरुषार्थ करके हम उस अंश वंश को भी समाप्त करें। यहाँ तक कि बाबा कहता है कई बार मेरी विशेषता का भी मुझे अभिमान हो जाता है, मैं अच्छी ज्ञानी हूँ, मैं अच्छी योगी हूँ, या मैं बहुत अच्छी सेवाधारी हूँ या सेवाधारी भाई हूँ। जो भी हम करते हैं अगर हमें दूसरों से प्रशंसा मिलती है उसकी, तो कभी कभी धीरे धीरे वो अभिमान का रूप, अहंकार का रूप ले लेता है। लेकिन मेरी विशेषता भी मेरी नहीं है, बाबा की दी हुई है। सेवा भी मुझे किसने सिखाई है? बाबा ने सिखाई है। सब कुछ मुझे बाबा का दिया हुआ है। हमेशा हम बाबा को सामने रखें और अपने को निमित्त निर्माण और निर्मल रूप से चलाते रहें। तो ये था बाबा की निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति को धारण करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। और बाबा ने ये भी कहा है कि हमें मनसा में निराकारी रहना है, वाचा में निर्विकारी और कर्मणा में, नहीं, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी रहना है। अगर हम अटेंशन रखेंगे तो जरूर हम बाबा के समान इस स्थिति को प्राप्त करके तीव्र पुरुषार्थी ही नहीं लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी, आजकल बाबा डबल विदेशियों का डबल पुरुषार्थी कहता है, तो डबल पुरुषार्थी की लाइन में हम आ जाएंगे और जल्दी बाबा समान संपन्न स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति।